जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विरोचन अपने पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र, जैसे शरद काल की महालता में फूल से फल परिपक्व होता है, तैसे ही आत्म अवलोकन करने वाले पुरुष को भोगों में विरक्तता प्रकट होती है। आत्मा के देखने से विषयों की प्रीति निवृत्त हो जाती है और हृदय में शांति प्राप्त होती है। जैसे कमलों में शोभा होती है, तैसे ही बीज लक्ष्मी स्थित होती है। इससे सूक्ष्म बुद्धि विचार वेत्ता जैसे आत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं, तैसे ही तुम भी त्यागो। प्रथम दिन के दो भाग देह के कार्य करो, एक भाग शास्त्रों का श्रवण विचार करो और एक भाग गुरु की सेवा करो। जब कुछ विचार संयुक्त मन हो, तब दो भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारो और दो भाग ध्यान और गुरु के पूजन में रहो। इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग्य होता है और क्रम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है, तब शने शने उत्तम पद की भावना होती है। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्तरूपी बालक को परचाओ। जब परमात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है, तब कर्म फांसी से छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय हुए चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है, तैसे ही वह शीतल होकर विराजता है। बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्मदृष्टि देखता और तृष्णा का बंधन त्यागना, यह परस्पर कारण हो जाता है। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा के त्याग से आत्मा का दर्शन हो जाता है। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, तैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है और भोगों का त्याग हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 90। श्री राम जी बोले कि बड़ा आश्चर्य है, पद्म की तात के साथ पर्वत बांधा है। अविद्यमान अविद्या ने संपूर्ण जगत वश किया है और अविद्यमान जगत को वज्रसार्वत दृढ़ किया है। यह सब जगत असत्य रूप है और सत्य किनाई स्थित किया है। हे भगवान, इस संसार की नटनी माया में क्या रूप है? महापुण्यवान लवण राजा ऐसी बड़ी आपदा में कैसे प्राप्त हुआ? और इंद्रजाली जिसने भ्रम दिखाया था, वह कौन था कि उसको अपना अर्थ कुछ न था? वह कहाँ गया और इस देही और देह का कैसे संबंध हुआ? और शुभ अशुभ कर्मों के फल कैसे भोगता है। इतने प्रश्नों का उत्तर मेरे बोध के निमित्त आप दीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह देह काष्ठ और मिट्टी के समान है। जैसे स्वप्न में चित्त के फुरने से देह भासता है, वैसे यह देह भी चित्त से कल्पित है और चित्त ही चैत्य संबंध से जीव पद को प्राप्त हुआ है। यह जीव चित्त सत्ता से शोभायमान है। उस चित्त के फुरने से संसार उपजा है। वह वानर के बालक के समान चंचल है और अपने फुरने रूप कर्मों से नाना प्रकार के शरीर धरता है। उसी चित्त के नाम अहंकार, मन और जीव है। वह चित्त ही अज्ञान से सुख दुख भोगता है, शरीर नहीं भोगता। जो प्रबोध चित्त है वह शांत रूप है। जब तक मन अप्रबोध है और अविद्या रूपी निद्रा में सोया है, तब तक स्वप्न रूप अनेक सृष्टि देखता है, और जब अविद्या निद्रा से जागता है तब नहीं देखता। हे रामचंद्र जी, जब तक जीव अविद्या से मलिन है तब तक संसार भ्रम देखता है, और जब बोधवान होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे रात्रि होने से कमल मुन जाते हैं और सूर्य के उदय होने से खिलाते हैं, वैसे ही अविद्या से जगत भ्रम देखता है और बोध से अद्वैत रूप होता है। इससे अज्ञान ही दुख का कारण है। अविवेक से पंचकोश देह में अभिमानी होकर जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है। शुभ करता है तो सुख भोगता है और अशुभ से दुख भोगता है। जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग धरता है, वैसे ही मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारता है। जो कुछ इष्ट अनिष्ट सुख दुख है वे एक मन के फुरने में है और शरीर में स्थित होकर मन ही करता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर सारथी चेष्टा करता है और बॉबी में बैठ के सर्प चेष्टा करता है, वैसे शरीर में स्थित होकर मन चेष्टा करता है। हे रामचंद्र जी, अचल रूप शरीर को मन चंचल करता है। जैसे वृक्ष को वायु चंचल करता है, वैसे जड़ शरीर को मन चंचल करता है। जो कुछ सुख दुख की कल्पना है वह मन ही करता है और वही भोक्ता और वही मनुष्य है। हे रामचंद्र जी, अब लवण का वृत्तांत सुनो। लवण राजा मन के भ्रमने से चांडाल हुआ। जो कुछ मन से करता है वही सफल होता है। हे रामचंद्र जी, एक काल में हरिश्चंद्र के कुल में उपजा राजा लवण एकांत बगीचे में बैठ के विचारने लगा कि मेरा पितामह बड़ा राजा हुआ है और मेरे बड़ों ने राजसु यज्ञ किए हैं, मैं भी उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूं, इससे मैं भी राजसु यज्ञ करूं। इस प्रकार चिंतना करके लवण ने मानसी यज्ञ आरंभ किया और देवता, ऋषि, सुर, मुनीश्वर, अग्नि, पवन आदि देवताओं की मन से पूजा की और मंत्र और सामग्री जो कुछ राजसु यज्ञ का कर्म है सो संपूर्ण करके मन से दक्षिणा दी। सवा वर्ष पर्यंत उसने यह यज्ञ किया और मन ही से उसका फल भोगा। इससे हे रामचंद्र जी, मन ही से सब कर्म होता है और मन ही भोगता है। जैसा चित्त है वैसा ही पुरुष है। पूर्ण चित्त से पूर्ण होता है और नष्ट चित्त से नष्ट होता है। अर्थात जिसका चित्त आत्म तत्व से पूर्ण है सो पूर्ण है, और जो आत्म तत्व से नष्ट चित्त है वह नष्ट पुरुष है। हे रामचंद्र जी, जिसको यह निश्चय है कि मैं देह हूं वह नीच बुद्धि है और अनेक दुखों को प्राप्त होगा, और जिसका चित्त पूर्ण विवेक में जागा है उसको सब दुखों का अभाव हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से कमलों का संकुचना दूर हो जाता है और वे खिल आते हैं, वैसे ही विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से रहित पुरुष दुखों में संकुचित रहते हैं। जो विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित हुए हैं, वे संसार के दुखों से तर जाते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राजा लवण ने राजसु यज्ञ मन से किया और मन ही से उसका फल भोगा, परंतु ऐसा सांबरी कौन था जिसने उसको भ्रम दिखाया? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वह सांबरी लवण राजा की सभा में आया तब मैं वहां था। मुझसे लवण और उसके मंत्री ने पूछा कि यह कौन है, तब मैंने उनसे जो कुछ कहा था वह तुमसे कहता हूं। हे राम जी, जो पुरुष राजसु यज्ञ करता है उसको द्वादश वर्ष की आपदा प्राप्त होती है। उस द्वादश वर्ष में वह अनेक दुख देखता है। राजा लवण ने जो मन से यज्ञ किया इसलिए उसको आपदा भी मन ही से प्राप्त हुई। स्वर्ग से इंद्र ने अपना दूत आपदा भुकवाने के निमित्त भेजा। वह सांबरी का रूप होकर आया और राजा को चांडाल की आपदा भुगता कर फिर स्वर्ग में चला गया। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा था वह तुमसे कहा। इससे मन ही करता है और मन ही भोगता है। जैसे जैसे दृढ़ संकल्प मन में फुरता है उसके अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त फुरता है तब तक आपदा प्राप्त होती है। जैसे जो जो कीकर का वृक्ष बढ़ता है त्यों त्यों कंटक बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मन के फुरने से आपदा बढ़ती जाती है। जब मन स्थिर होता है तब आपदा मिट जाती है। हरि हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।